दूसरी होती है साधन भक्ति से। साधन भाव और साधन भक्ति भी बाही है, तो भी उसका उदाहरण भी सुनाए चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया। किसी के घर में कोई संत गए तो उन्होंने पूछा कि प्रसाद आप कैसे पाएंगे, आप रसोई बना करके प्रसाद पाएंगे या ठाकुर जी का भोग लगा है हम आपको खिला दें। भाई हम इतना परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, आपके घर में जो कुछ भी ठाकुर जी का भोग लग गया है वो हमको दे दीजिए, हम खा लें। बस उनको वो परोस दे दिया, ठाकुर जी का जो भोग लगा था प्रसाद पा लिया एक मिनट में। और दूसरा आदमी जो था वो बोला जी नहीं हम अमनिया करेंगे, स्वपाकी मैं हूँ अपने स्वपाक। तो भाई अच्छा तो क्या चाहिए, तो हम उसको चावल डाल घी और ये सब सामान दे दीजिए। तो उसने दे दिया, कहिए तो मैं रसोई कैसे बनाऊंगा, तो मुझको चूल्हा भी चाहिए। तो चूल्हा देता हम लकड़ी कहाँ से ले आऊँगा, तो लकड़ी भी दे दिया, नमक भी दे दिया, सब कुछ उनको लेकर के फिर उन्होंने रसोई पानी भी ला दिया। तो फिर उन्होंने रसोई बनाई, दो चार घंटे में बेचारे ने वो किया, तब फिर भोग दे करके पाया। तो वो भी देना ही है, वो जो साधनों को जुटाना मैंने देना है, लकड़ी चावल दाल तरकारी आदा मैटा चूल्हा चक्कड़ बेलना चाकी ये सब देना, ये भी देना ही है। किंतु इसमें अपने आप वो सब कर रहे हैं, दे दिया इसके बाद नहीं कर रहे। तो ऐसे साधन भक्ति भी मत समझो कि हम साधन के द्वारा सब हम अपने से कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें भी भगवान और वैष्णव की कृपा से ही साधन की सामग्रियाँ मिलती हैं, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है। और दूसरा होता है कृपा सिद्ध में साथ ही साथ बना बनाई वो मिल गई भगवान की कृपा। तो हम लोगों ने इसमें जो ब्रज के विभिन्न जगहों में गए, उद्धवकारी गए, कदम बटेर गए अथवा खंडीर बन में गए, राधा कुंड में भी जाएंगे, गोवर्धन में हम लोग गए, द्वादश वन में गए, इस किस लिए गए, बना बनाई चीज की को ग्रहण कर। कृष्ण ने कहा है, नारद जी ने मांगा है, जो कोई आपकी लीला स्थलियों में श्रेष्ठ लीला स्थलियों में जाएगा, वहाँ की धूलि सिर पर लेगा, उसकी कामना करेगा तो वो जल्दी से, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर गए। ये वो चीज़ जो हम साधन के द्वारा कोटि कोटि कल्पों में पाएंगे, 10-20 कल्प में पाएंगे, धाम की कृपा से हम लोग साधन पाएंगे, इसलिए वहाँ पर हम गए। और साधन भजन की जो बात है, ये भगवान की दी हुई साधु संग, गुरु साधु संग या भगवान की कृपा से ही गुरु भी मिलते हैं, ये साधन रूप सनातन इत्यादि के द्वारा किए हुए हैं, रागानुगा हो अथवा वैदिक भक्ति हो, उनके मुख से हम इसके सुनते हैं जैसे क्या क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए साधन लगते हैं। तो साधन भजन के लिए ये सब चीज़ें, इसमें वो भी कृपा का कुछ संदेश मिलता है, इंगित मिलता है इसी में। तो अब यहाँ पर ये बतला रहे हैं कैसे हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए और कैसे भगवान की कृपा या वैष्णव की कृपा हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोग उन स्थानों में गए, उनसे वहाँ पर प्रार्थना किया और धाम की कृपा हो, सूरी की कृपा हो, ऐसे वैष्णव की कृपा हो, क्योंकि वो चीज़ सहज ही हमारे हृदय में स्तुति, इसलिए वहाँ पर गए। अभी वृंदावन में जाएंगे, राधा कुंड में जाएंगे, सब इस। और कुछ चीज़ें हम लोगों को चाहिए, उसी के सहारे मत बैठो, कुछ करो भी नहीं तो कृपा तुम वो करेंगे किंतु तुम लोग ले नहीं सकते। मान लिया कि एक आदमी है, वो किसी के यहाँ गया और उसने राबड़ी खीर और घी में तली हुई कचौड़ी और ये सब दे दिया और उसको पेट का रोग है, आम निकल रहा है, खूनी आम है, तो वो ग्रहण करेगा कि नहीं, यदि करता है तो क्या होगा? इसलिए विभाविक धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए वो हमको कृपा करके हमारा आधार भी दिया, जैसे महाप्रभु जी ने पात्र दिया और वो भक्ति भी दिया, तो वैसे ही वो हमारे ऊपर में कृपा करें। उसके लिए हमको ये सब चीजें बनाना है, प्लेटफॉर्म अपने हृदय में वो साधन के द्वारा। इसलिए साधन के लिए ये सब चीजें हम लोगों को पहले देखनी चाहिए, जो लीला कथाओं के श्रवण से ही होगा तो, किंतु उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। इसलिए हम लोगों को कुछ साधन बनना, साधन जन्य परिश्रम देखेंगे कुछ और उनकी कृपा भी देंगे, तो साथ साथ दोनों मिलने पर काम। इसलिए साधन भजन में भी हम लोगों को पिछड़ना नहीं है। गए घाट पे राधा कुंड के पास में प्रार्थना बस हो गया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली, हो गया नहीं। इसलिए इन सब चीजों की भी जरूरत है, साधन भजन। कैसे साधन भजन होगा? तो ये होगा साधु संग। साधु संग नहीं होने पर कोई भी साधन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान अनुग्रह करके पहले साधु संग दे देते हैं, जो कि भजन करने वाले हैं ऐसे लोग। और साधु संग मिलने पर भी उनके बातों को ग्रहण नहीं किया, केवल उनका संग लिया, संग तो किया नहीं, बाहरी किया, और भीतर के उनके गुण, उनके आचरण और विचार नहीं लेगा तब फिर क्या होगा? इसलिए दोनों चीज ग्रहण कर भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, और शानदार इस रूप में, निष्कपट रूप में उनके जो आचरण हैं, विचार हैं, साधन भजन के जो चीज़ें हैं, वो सब ये साधु संघ का अतिरिक्त कहीं नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी जी बृहद भगवतामृत वर्णन कर प्रारंभ से लेकर साधन की एकदम पहली स्थिति से लेकर और अंतिम स्थिति तक का, सिद्धि तक का भी वर्णन किया है। तो हम लोगों को साधन के पहले स्टेप से लेकर के चलने की चेष्टा। मैं तो चाहता था जो मन शिक्षा उपदेशामृत शिक्षास्त्र ये सब भक्ति गोस्वामी सिंधु का पहला पोर्शन थोड़ा सा जो साधन वाला है, ये सब को तो हम लोगों का तो करीब करीब 10-12 दिन तो चला गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ साधन भजन का भी हो, भगवान की कृपा के लिए भी प्रार्थना। इसमें कारण है सनातन गोस्वामी ने महत्संगम महात्मम एव एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो जेन विप्रसौ सद्यो अभूत तत् स्वरूपवत्। ओह, महत्संग का ऐसा ही महात्म है कि परम अद्भुत महात्म उसका है। साधारण नहीं, अद्भुत मैंने क्या, साधारण सचराचर में होता है वैसा नहीं, अद्भुत विचित्र लौकिक रीति के अनुसार भी नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसको भी करा देता है। ये अद्भुत उसका विचित्र फल है। कृतार्थो जेन विप्रो विप्र असौ, अरे जिसे कि यह ब्राह्मण कृतार्थ हो गया। कौन ब्राह्मण? धन संपत्ति के लिए ब्रज को छोड़कर के, मथुरा को छोड़कर के गया आसाम प्रदेश के, कौन सा कामाख्या, और वहां पर देवी ने किसी प्रकार से कृपा करके उनको गोपाल मंत्र दे दिया। वो भी उसका आचरण कैसे करना, अनुष्ठान करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी नहीं किया। हम लोग को तो गुरु तो दे देते हैं, सवेरे स्नान करके पूर्व मुख हो करके 10 बार का, दो बार तो 10 बार, शाम को 10, इतना तो बतला ही देते हैं। तुम तो वो देवी कुछ नहीं बतला सके, बस जाओ तुम्हारी सब सिद्धि इससे हो जाएगी। और वह बेचारा देवी के बातों का पूर्ण रूप से विश्वास कर दिया। हम लोग को शायद इतना विश्वास गुरु के वचन पर नहीं होता है, किंतु उसका पूर्व जन्म का कुछ संस्कार ऐसा, एक तो जन्म दे दिया मथुरा में और दूसरे उसके ऐसे संस्कार थे जो उस पर बातों पर विश्वास करते। और कब करना चाहिए कैसे करना है ये ने? करने लग गया, जब भी मौका समय मिलता तब भी वो करने लग गया। और देखो जिसका ऐसा प्रत्यक्ष फल क्या हुआ, सब जितनी धन वैभव सब पाने की लालसा थी वो सब समाप्त हो गई। ये मंत्र का फल है पहला चरण, अनर्थ दूर हो गया। लौकिक जितने प्रकार की पाने की लालसा थी वो सब लालसाएं दूर हो। मंत्र का ये नहीं फल, हम बहुत दिन से मंत्र जप रहे हैं, हमने धन की लालसा की, प्रतिष्ठा की लालसा की, या उसकी प्रतिष्ठा की कामना आ गई, धन की कामना आ गई, और अभी धन पर अभी लोभ रहा, इच्छाएं रही, तो ये मंत्र जप का फल नहीं हुआ। हम लोग को यही गड़बड़ हो जाता, मंत्र जपते हैं किंतु इच्छाएं नहीं, क्यों नहीं होता? इसलिए कि उस तरह से विश्वास के साथ में हम लोग नहीं करते, और जो करते हैं जरूर उसका हो जाता है। कुछ दिनों में ही एकदम परिवर्तन हो जाएगा, जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, अवश्य संभावी है। पानी में जाएंगे, स्नान करेंगे, हृदय में शीतलता नहीं आएगी, शरीर में शीतलता नहीं आएगी, और शरीर की दूषित चीजें नहीं दूर हो जाएंगी। यह कभी होता है, किंतु स्नान किया और गंदगी लगी रही तो इसका मतलब क्या हुआ, स्नान गंदे पानी में किया, स्नान नहीं किया, ऐसे ही। इसलिए साधन भजन करने से जरूर वैराग्य आएगा, साधन भजन करने से जरूर सांसारिक वासनाएं दूर होंगी ही। नहीं होता है तो हमारे अंदर में कुछ जरूर करनी बतलाया। यदि हम भजन करते हैं भजन का फल अवश्य होगा, किंतु यदि धन पुत्र परिवार प्रतिष्ठा इत्यादि में यदि वो निक्षिप्त होता है, शान्न फल जनकम शीघ्र में वात्त विप्र, जल्दी से फल नहीं, कुछ गड़बड़ होगा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, यदि भजन करते हैं तो वो भजन करते हैं किंतु लालसा बढ़ जाती है धन की, पुत्र की, और सब संसार की प्रतिष्ठा इत्यादि, उसमें केवल अभिमान ही हाथ लगता है, केवल दंभ।
मौन व्रत शुद्ध तप दयानाम साधना व्याख्या रहो यप अध्याय श्रद्धाय अपवर्य वार्ता भवन कुदत दाम्भे
का। भागवत पढ़ेंगे ना इसे भक्ति होती है, भजन करते हैं उसे भगवान में प्रेम, किंतु दाम्भिका नाम की हो गए दम्भ बढ़ जाता है। मौन
व्रत शुद्ध तप
मौन व्रत
शुद्ध तप दयानाम साधना
अध्ययन इत्यादि भागवत का अध्ययन भी, ये सब जितनी चीजें हैं ये दम्भिकों के लिए दम्भ बढ़ा देता है, भक्ति नहीं होती। इसलिए दम्भ इत्यादि छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति होती, तब जाकर के शुद्धता होती है। इसलिए यहाँ कहा महत्संगम महात्मन एतत् परम अद्भुत, वो कैसा अद्भुत ये उनका प्रभाव है, जेनो असौ विप्रो विप्र जो समस्त प्रकार की कामनाएं धन की कामनाएं लेकर के विवाह इत्यादि की कामना लेकर के गया और देवी ने उसको मंत्र दे दिया और उस मंत्र के प्रभाव से क्या हो गया, सत्संग पाया किसका, स्वरूप का, और कैसा हो गया, स्वरूपवत शब्दो अभूत, शब्द ही शब्द, केवल हरि कथा सुना, उसको साधन भजन करना नहीं पड़ा, सत्संग का निर्णय। परीक्षित महाराज जी संघ की महिमा देखो, कोई साधन भजन नहीं किया, केवल हरि कथा सुना, उनके संघ में रहे, और उसे क्या हुआ? भगवत प्रेम की हमें लाभ, साधन भजन की अपेक्षा भी नहीं रही और उनको प्राप्त हुआ। ये है साधु संघ की महिमा। अभी ठीक वो व्याख्या में कहते हैं कि बहुत हमने सुना है, पढ़ा भी है, कितने कल्प में तब सूतियों को और रामचंद्र जी वाले 60,000 कजने कितने कल्प हो गए तब जाकर के मंत्र की सिद्धि हुई, गोपाल मंत्र की। अच्छा इतना दिन क्यों लगा, इतना कल्प, इसको समझो जो शब्द जल्दी हो, इसको भी जल्दी समझो। हम लोग का कितने कल्प से जन्म हो रहा है, कब से जन्म हो रहा है,
जब से सृष्टि है तब से
प्रारंभ सृष्टि सबसे ही हो रही, और तब से हम लोग हैं। उनको तो हो गया, वो चले भी गए, नित्य लीला में प्रवेश कर दिए, और हम लोग देखो जी कहां पड़े हैं, और सर लोग हैं जो और कहां पड़े हुए हैं, जल्दी ही समझना है। इसलिए ऐसा मत समझिए दो एक दिन में, एक महीने में, 10 दिन में महाराज हम कौन भूति नहीं हुई। इसलिए उत्साह निश्चयाति इसको ठीक रखना है। तो यदि कहो खूब प्रयत्न पूर्वक करने से भी साधन भजन, भगवान की कृपा विशेष के द्वारा अत्यंत विलंब से जो भक्ति पाई जाती है, इन्होंने कल्पों कल्पों में भगवान की कृपा को पाई, और वो जो ब्राह्मण कोई भी योग्यता नहीं थी, धन के लालच से गया, वृंदावन को छोड़ करके गया वहां, और फिर वहीं से आकर के सिद्धि कहां हुई, इस वृंदावन में। ये अद्भुत परम महात्मा जो वैष्णव के संग का प्रभाव है, जो कि बहुत जन्मे में होता, वो आया वहां से और कथा सुनने लगा। स्वरूप जी भी कथा सुनाने के लिए पहले से तैयार बैठे थे कुंज में, और वो गया तो जाके कोई रो रहा है ना गा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, और उसको अपने जीवन की बीती हुई बातें बतलाई, कैसे मैं भगवान की कृपा पाया, और वही बतला रहे हैं उसको सुन सुन करके। जब सब कुछ बतला दिया तो उसको ज्ञान तो हुआ, तत्व तो ज्ञान, किंतु अनुभूति नहीं, उसको प्रेम वैसा नहीं हुआ। गोप कुमार को जैसा प्रेम है ऐसा प्रेम नहीं, सब कुछ सुन लिया, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, और ऐसे मालूम होता है कि हृदय शून्य है, हम लोग की तो वासनाएं भी नहीं जाती हैं, तो उसकी वासनाएं तो खत्म हो गई थी, किंतु प्रेम की अनुभूति नहीं है। वह कुमार जी हरिनाम कर रहे हैं, आंखों से अविरल धारा बह रही है अश्रुओं की, और रो रहे हैं, हृदय उनका द्रवित हो रहा है, इनका कुछ नहीं है, कौन भाव कर रहे हैं इस चीज को, तो हम लोग प्रश्न करेंगे जिसने तो साधन भजन किया नहीं और थोड़ी देर तक सुना ये उपाख्यान सुना है, और जब देखा जैसे इसको प्रेम नहीं हुआ, कुछ तत्व ज्ञान हो गया, तब उन्होंने कहा कि ओ तुमको भी प्रेम नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, बस उसके परमिशन रख दिया, बस एकदम वैसे ही स्वरूप वत हो गया, जैसे वो रोते थे अनुभव करते थे, लीलाओं को नित्य देखते थे, भगवान के वो परिकर थे, वैसे ही भगवान का परिकर हो, और फिर वो देखा कि ये सर 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 करता हुआ एकदम गुरु वृंदावन में पहुंच गया, तो ये वैष्णव की अद्भुत ये कृपा है। ये कैसे हुआ, इसी आशंका के लिए कह रहे हैं महत संगम एतत् परम अद्भुतम एक। ये वैष्णव संघ की ऐसी मान कि एक आदमी भी जैसा भी हो उनके संग से इस प्रकार से सहज ही पा सकता है। जैसे बंसी है ना, उस बंसी में अपना कुछ नहीं है, जैसा जो उसमें स्वर देगा वैसा ही वो बोले। ऐसे गुरु के समीप वैष्णव के समीप जाने पर ऐसा ही होना होगा, तब तो हो जाएगा निष्कपट होकर। वो दुराचारी हो कोई बात नहीं, सब कुछ उसमें दुर्गुण हो कोई भी बात नहीं, विषयों की लालसा भी हो कोई भी बात नहीं, किंतु गुरु के पास में जाए ना तो कैसे जाए। बस गुरु जी की ही आवाज उसमें रहे, ये बहुत कठिन है। अब अपना कुछ ना रहे, सब कुछ उनका हो जाए, वैष्णव का हो जाए, गुरु का हो जाए, जो हमको भजन की शिक्षा दे रहे हैं उनका हो जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं मोर, अब हमारे लिए कोई अपनी चीज अब नहीं रह जाएगी, तब वो दे करके देंगे। इसलिए कहते हैं महत्संग का ऐसा अद्भुत फल। वस्तुतः महत्संग का ऐसा ही अद्भुत महिमा है कि वो ब्राह्मण साधन भजन न करने पर भी नहीं करने पर भी संपूर्ण रूप से लोग कृतार्थ हो गए। अजय कैसे संभव हुआ, हुआ कैसे? अजय ऐसा संशय मत करो, भगवान के प्रति और वैसे सिद्ध महापुरुषों के प्रति, वैष्णव के प्रति यदि वैष्णव ऐसी शंका मत करो कैसे हो गया। वो क्या है, पंगुलंग है, मुकम करति वाचालम पंगुलंग है, तेजरे यत् कृपा तमाम वंदे
शीघ्रं तं दिनतारे
परमानंद माधव। ये हो जाएगा, संदेह मत करो। संदेह यदि हुआ तो सब चौपट चौपट हो जाएगा। भक्ति के विषय में, वैष्णव के संबंध में, यमुना जी के प्रभाव, गोवर्धन जी के प्रभाव के संबंध में, धाम के प्रभाव के संबंध में कोई प्रश्न मत रखो, संशय ही मत रखो, ये जरूर हो जाएगा। ये जिसका कमी जितना है, जिसको जितना संदेह है, इसलिए उनका नहीं होगा, नहीं तो अवश्य हो जाए। दुर्वितर्क उनका महात्म है, महात्म को समझ दुर्वितर्क, तर्क से अतीत, तर्क के द्वारा वो नहीं समझे कैसे हो गया। इसलिए वैष्णव की कृपा से सत्संग के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है, संगो जन संस्कृत हेतु सत्सु विहितो अधीया सएव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो ज संस्कृत हेतु, जो संग कुसंग संस्कार संसार का हेतु है। संसार में हम क्यों आते हैं, कृष्ण को भूल कर, और असत संग में पड़ने से असत कामनाएं होती हैं, और उन कामनाओं का भोग करने के लिए संसार में अनादि काल से जीव बद्ध है। कभी देवता, कभी दानव, कभी यक्ष, कभी जानवर, कभी मनुष्य, कभी देवता इत्यादि होता रहता है, कि पतंग नाना जुगियों में जाता है और इसी चक्र में घूम रहा है। ये संसार में का हेतु है। यदि वो विहितो अधीया, यदि बुद्धिपूर्वक नहीं किया गया है, अज्ञान नहीं किया गया है, जैसे आग में हाथ रखने से जलाएगा, अनजान में भी रखो जान कर रखो अनजान में रखो, वो आग जलाएगी। हाँ ठीक वैसे साधु संग उससे भी अधिक शक्ति संपन्न और प्रभावशाली। जानबूझकर साधु संग करो, अध्याय करो, जैसे जानबूझकर कृष्ण नहीं या अनजान में ही दुराचारी दुष्ट अद्वैतवादी भक्ति रही स्त्री संगी का संग किया तो क्या होगा, संसार का हिंदू हो जाए। वैसे आप अध्या माने बिना जानबूझ करके साधुओं का संग कर दिया, बाई चांस भी हो गया तो क्या हुआ, सयव साधु साधु कृतो निसंगत पाए, इसी को कहते हैं निसंग। और उसे भव सागर को सहज ही पार कर करके भगवत प्रेम को वो पा लेगा। इसमें तर्क मत करो, तर्क मत करो, इसकी उनकी शक्ति ही ऐसी है। सनातन गोस्वामी इसके लिए कहते हैं कि देखो साधुओं के यहां सब समय जाओ, नहीं बात करते हैं तो भी बैठो, जो वशिष्ठ में भी ऐसा कहा सदा संको अभी कभी करते हो, सदा संतो अभी गंतव्य उपदिशंति न जाहि स्वैर कथास्ते सन उपदेशो भवन्ति ते। साधु उनके संग में जाओ, उपदेश नहीं देते हैं तभी तुम उनके पास में बैठो, स्वच्छंद रूप में उनके मुख से जो कुछ भी कथा निकलती है उसको उपदेश के रूप में कहो, नहीं होगा तो उनका चरित्र देखो। उनके पास में बैठने से अपने आप ये कामनाएं वासनाएं कहाँ हट जाएंगी, चित्त पवित्र हो जाएगा। यदि हम आपके पास में शीतकाल में बैठते हैं तो सर्दी नहीं चली जाती, चली जाती है। यदि हम किसी जगह जाते हैं और धूप बत्ती जल रही है तो उसका सुगंध नहीं आएगा, तो साधु में भी जो गुण है वो तुम्हारे अंदर में अपने आप उनके साथ में रहने से ही वो उसमें आएंगे, जरूर आएंगे। और यदि कृपा करके उपदेश देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, इसलिए उनकी स्वयं कथा, स्वयं माने अनायास उनके मुख से जो हरि कथा जो कुछ भी निकलता है सांसारिक बातें भी तो उसको तुम, हमारे गुरु जी कहते थे जब हम हरि कथा नहीं कर रहे तभी तुम लोग बैठो हमारे पास, तुम लोग उसे बहुत कुछ सीखेगा, संसार में कैसे चलना है, विषय लोगों से कैसे चलना है और जो साधारण लोग हैं उनसे कैसे बातचीत करना चाहिए, ये सब ढंग तुम लोग सीखेगा। तो हम लोग वैसे ही बैठे रहे तो हम, मैं तो बैठा नहीं रहता, हम तो जरूर प्रश्न पर प्रश्न पूछ कर रहा और जरूर वो बड़े प्रसन्न होकर के तर्क वितर्क करने पर भी बहुत प्रसन्न होकर के सुना देते हैं। साधुओं के निकट सर्वदा जाओ बैठो। बहुत से लोग हैं डरते हैं, बहुत डरते हैं ना, डरते हैं कि नहीं डरते हैं, हाँ बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं, जैसे खटमल डरते हैं आदमियों से और चूहे डरते हैं, क्यों क्यों डरते हैं ये
उन लोग का डर है आदमी,
बिल्ली जो है ना वो नहीं डरेगी, वो चुपचाप घिस सकती ही चली जाएगी, कुत्ते भी नहीं डरते, गाय भी नहीं डरे। जो हिल मिलते हैं हमारे लिए उपकारी हैं वो नहीं डरेंगे, वो तो एकदम चलेंगे। और जो जिसका स्वभाव है कुछ अनुपकार करने का, जो उपकार नहीं करते वो क्या करेंगे, खटमल देकर ही भागेगा और चूहे भी भागेंगे, क्योंकि ये अनिश्चय करते हैं कुछ कुछ बात। तो गुरु वैष्णव से डरने की कभी कोई बात है, यदि जगत में दयालु और कृपालु है तो कौन है, वैष्णव है, उनसे कोई डरा तो क्या समझा जाए, इसलिए उनसे डरना चाहिए। उनके यहाँ जाने से तो हम लोग निर्भीक होंगे,
यावत पापेस्तु मलिनम तावत एव हि न शास्त्र सद्बुद्धि सद्गुरुतः।
जब तक हृदय में मन लगता है तब तक डर लगता है
पापित द्वारा जो तो दिन चित्त मोले,
और जिस समय ये सब नहीं रहेगा एकदम निर्भीक होकर के सिंह सावक के समान सिंह के पास में चला जाए, उछल करके उसकी पीठ पर चढ़ जाएगा और पंजे से ऐसे ऐसे करेगा मैया को और बाप को, बच्चा करेगा कि नहीं ऐसे ऐसे दूसरे लोगों के पास में जाने से डरना चाहिए। हम डरते हैं कि हमारी कोई बात प्रकट न कर, इसलिए हम डरते हैं। उनके मुख से जो स्वाभाविक बातें निकलेंगी वो हमारे लिए उपदेश है, नहीं निकलेगा तो भी मौन रहेंगे तो भी उनके हृदय की जो चिंगारियां हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हैं गुण है वो सब अटम उसके निकलेंगे और हमारे हृदय को साफ कर देंगे, इसलिए उनके पास डरना। यदि हम लोग दुर्वासा जैसे ऋषियों के पास रहे तो और अच्छा है, क्यों वो झट हमारे सब दोषों को निकाल करके और सामने रख ले, इसलिए ऐसे महात्माओं के पास में रहना
चाहिए,
इसलिए उनसे भी डरना नहीं चाहिए, हमारे दोषों को उजागर कर देंगे और जल्दी से हम उनको धोख पहुँच करके भक्ति के योग्य हो जाएंगे। ऐसा संग जो है सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति शून्य हृदय में भी भक्ति रस एकदम परिपूर्ण रूप से प्रवाहित कर देता है। हमारे भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर्य पद्मिनी में शायद ये लिखा है, पहले श्लोक मैं चैतन्य महाप्रभु की अहैति कृपा की पुनः पुनः वंदना करता हूं। कैसी कैसी वो कृपा है, वो कृपा रूपी कृपा कैसी है, आकाश में कादंबिनी कृपा रूपी कादंबिनी माधुर्य को वर्षा करने वाली है, माधुर्य रस ऐसी कादंबिनी है, कादंबरी कादंबिनी जो मधुरस की सरस वर्षा करती है। वर्षा बात छोड़ दो, वर्षा होने के पहले जो
ठंडी ठंडी हवा से
हवा चलती है उस मेघ से स्पर्श करके जो हवा चलती है उस हवा से क्या हो जाता है, मरुभूमि में बहुत दूर रहने वाले मरुभूमि के जो पेड़ हैं जो सूख रहे हैं
गर्मा ही शांत हो जाता है, शीतल हो जाता
पादप जो वहाँ के जो सूख गए हैं वो भी सरस हो जाते हैं, उसमें हरे पत्ते आ जाते हैं, फल फूलों से वो लग जाता है, बहुत बड़ी भिन्नता के साथ में लिखा है। मैं कौन हूँ, मैं मरुभूमि में रहने वाला वो मेघ कादम्बिनी से बहुत दूर, मेघ से बहुत दूर हूँ, मरुभूमि में पड़ा हुआ हूँ, नीरस हो गया हूँ, घास सूख जाती है ना? और यदि वर्षा होगी या ठंडी ठंडी आएगी हवा में तो क्या हो जाएगा, रास्ता का तो उसमें तो कुछ रहता है ना, जड़े रहती हैं, जड़े मट्टी में रह करके उसमें कुछ थोड़ा सा रस होता है, इसलिए जड़ से ही फिर से घास पैदा हो जाती है, किंतु जहां पर घासें एकदम सूख गई हैं नीचे से ऊपर तक अर्थात पात्रता भी समाप्त हो गई है, महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है पिता कदम्बिनी कि बहुत दूर में जो मेघ से जो हवा आती है उस हवा से ही वो पादप एकदम सरस हो जाता है, फल फूलों से लग जाता है, छाया से युक्त हो जाता है, ऐसी वो कृपा क्योंकि महाप्रभु जी की कादंबिनी पादप है। तो इसी को कह रहे हैं कि भक्ति शून्य हृदय में भी, भक्ति शून्य मैंने क्या, भक्ति तुम्हारे हृदय में थी या है किंतु अभी थक गई है विषय वासनाओं से, चेतो दर्पण माध्यम चित्त रूपी दर्पण बलिन हो गया, तो उसमें भी साधु संग के प्रभाव से वो नवजीवन का संचार होकर के भक्ति उसमें संचरित होगी। इतना साधु संग में बल है, आप जहां तक हृदय शून्य मार्ग परिभ्रमण कर लिया, जिनका हृदय शून्य मार्ग में परिभ्रमण कर रहा है माया मरीचिका की छलना में भ्रांति विलास से परिपूर्ण हो रहा है, माया का जो विलास है ये विलास इस परिवार भोग की लालसा कामना वास इससे भी परिपूर्ण है। और द्वैत बात का भी भाव आ गया है जो भक्ति को नष्ट करता है वो भी यदि साधु संग करे तो उनके हृदय में भी नित्या आनंदमय रसपूर्ण भक्ति रस संपूर्ण रूप से वहां पर प्रवाहित हो जाएगा। ऐसे ये कृपा इसलिए ये कोई विचित्र बात नहीं हुई कि ऐसे महात्मा के संग में कौन स्वरूप स्वरूप जी के संग से गोप कुमार के संग से ये मातु ब्राह्मण ये भी वैसा ही तत्स्वरूप अभूत उनके समान हो गया गोप
के समान हो गया।
हम लोग क्यों नहीं होंगे जरूर हो जाएंगे ऐसा संग रहे और संग को ग्रहण कर ले हम लोग तो जरूर हो जाएगा। किंतु कामना वासनाओं को कुछ दूर करना ये हमारे हाथ इच्छा तंत्र तो होनी चाहिए दूर नहीं कर सक पाते हैं। क्रोध आता है तो उनको दूर नहीं करते किंतु क्रोध को दूर करने की लालसा तो आंतरिक होनी चाहिए इच्छा इच्छा तो हमारे अधीन की बात इच्छा ही नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी और इच्छा यदि हम करें क्यों नहीं जाएंगे उनकी कृपा को हम ग्रहण करके उसको दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से मृत भी अमृत बन जाता है वो था मृत भक्ति थी मृत वहां अब वो हो गई अमर बेल होकर के एकदम वैकुंठ को भी पार करके द्वारका इत्यादि पार करके वृंदावन में कृष्ण के चरणों पर वो कल्प वृक्ष पर वो अप्रेम फल पक करके गिरने लगा और माली इस जगत में आस्वादन कर है कहाँ फल कहाँ है और वो माली कहाँ है और देखो वहां से एकदम आस्वादन कर रहा है ऐसे ये भावावस्था। और सिद्धावस्था में क्या करेगा उसी को पकड़ करके चढ़ते 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 एकदम गुरु वृंदावन में कृष्ण के चरण पर पहुंच जाएगा। अर्थात मृत स्वरूप एक मृत देह अमृत स्वरूप भगवस्वरूप योगी दिव्य देह भक्त विनोद ठाकुर जी ने कहा अतः कृष्ण आमादि न भवे ग्राह्य इसी की व्याख्या में बदला है चेतो दर्पण माध्यम वाले करें कि देखो इंद्रियों के द्वारा तो ग्राह्य नहीं है प्राकृत और हमारी बुद्धि जीवा कान हृदय सभी जड़ हैं इसमें अप्राकृत कृष्ण नाम कैसे स्फूर्ति होती है अप्राकृत जो शुद्ध कृष्ण नाम है जो भगवत स्वरूप है वो कैसे ही स्थिति में अवतरित होता है तो कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया सुनो जे कैसे होता है तो उन्होंने साधु संग से आरंभ किया और करते 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 ले गए बहुत दूर कैसे पाता है इसे कहते हैं कि साधु संग से पहले जितने अनर्थ हैं अपराध हैं और आपद समूह हैं हमारे लिए विघ्न स्वरूप वो सबसे पहले स्थिति पहले चरण में ये और जितने रूप में ये दूर होते जाते हैं कितने रूप में दूर होंगे जितने परिमाण में भक्ति हृदय में कितने परिमाण में ये दूर अनर्थ ऐसे नहीं दूर होंगे अनर्थ दूर होता जाएगा और भक्ति आती जाएगी ऐसा मत समझो भक्ति आती जाएगी अनर्थ दूर होता जाएगा इस रूप में जितने रूप में हम गुरु सेवा करेंगे वैष्णव सेवा करेंगे हरिनाम करेंगे भजन करेंगे उतने ही परिमाण में ये शुद्ध होती जाएगी और ये सब दूर होती जाएगी। तृतीय स्कंध में विदुर जी ने भी ऐसा ही कहा क्या कहा भगवता कुटस्थस्य मधुद्विषः जत सेवा सेवया भगवता कुटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्र पादयो व्यसनार्थम् जत सेवाया भगवत जिनकी सेवा करने से किनकी सेवा करने से भगवान की सेवा करने से शरण माने यहाँ पर साधन भक्ति शुद्ध भक्ति का नहीं पर साधन भक्ति के साधन अवस्था में भी भक्ति अप्राकृत होती है प्राकृत नहीं होती जो भजन करता है वो प्राकृत उसका हृदय और ये सब होगा आधार किंतु भक्ति का अनुशीलन करते 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 उसका आधार भी उन्नत होता जाएगा। भक्ति किसी भी स्थिति में प्राकृत नहीं होती, अप्राकृत होती है। साधन अवस्था में जो नाम है ना वो अप्राकृत है, हरि कथा वो अप्राकृत है, भक्ति का कोई भी अंग है वो सब अप्राकृत है। हम लोगों का हृदय वैसा नहीं है, साधक हम लोग वैसे नहीं है, इसलिए उसको मिश्रा कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा संग सिद्धा आरोप सिद्धा इत्यादि नाम है, किंतु भक्ति सब समय साधन अवस्था में भी वो अप्राकृत है। तो जिनकी सेवा से कैसा होता है अपना देव न्याय साधु संग साधु गणे चरण सेवा करिए, यत सेवाया भगवत कुटस्थस्य मधुदेश यत सेवाया, यत सेवाया माने
जिनकी सेवा से,
किनकी सेवा करने से,
संतों,
कौन संत, आप जैसे, ये विदु कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मैत्री जी के लिए कह रहे हैं, मैत्री जैसे आप जैसे साधु संत लोग हैं, आप लोगों की सेवा करने से भगवान मधुसूदन कुटस्थ जो मधु दिशा मधु का देश करने कौन कृष्ण, वो कैसे है कुटस्थ, सर्वदा एक रस हैं, कभी भी च्यूत नहीं होते हैं। ये कुटस्थ का अर्थ बतलाएंगे आगे, करने से कुटस्थ, कुटस्थ माने दुर्गेय, जिनको बहुत साधन भजन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, वेदों को पढ़ने से नहीं जाना जाएगा, नमात्मा प्रवचन लभ्य हो नमे धया बहुनाश हो, हम लोग की विद्या से पढ़ने से हम लोग पुस्तक एक एक लेकर के बैठ जाते हैं ना पढ़ रहे हैं, उसे हो जाएगा तो अभिरति मंजरी या कौन रस कलश इत्यादि हम पढ़ने बैठ जाए या भागवत पढ़ने बैठ जाए तो हो जाएगा, बड़ा कठिन है भाई, बल्कि वो क्या होगा हमारे हृदय के अनुरूप में वो जड़ रस को ला दे करके हमको कहीं गिरा भी सकता है, इसलिए अपने अधिकार के अनुरूप में हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान बड़े दुर्गे हैं, और भगवत भक्ति कैसी है, सुदुर्लभा, कौन सी भाव ये सुदुर्लभा, साधन भक्ति सबके लिए सहज हो सकती है, हरिनाम यदि श्रद्धा भी नहीं है तभी तो हरे कृष्ण कह ही देते हैं, श्रद्धा नहीं है और कुछ नहीं होता है, जैसे भी हम हैं गोवर्धन की परिक्रमा कराते हैं, अब हम लोग नहीं कर सकते, अब उतनी ताकत समर्थ नहीं रही, किंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता कुछ भी नहीं जाता तो परिक्रमा तो जोर से दौड़ करके वो कर देते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं ना सबको पार करके दौड़ते हुए दो घंटा के अंदर में वो पूरी परिक्रमा कर देते हैं, और दंडात्मक परिक्रमा कर रहे हैं, बस दंड फेल रहे हैं।
सर हमारे कोई के तीन चार बार परिक्रमा लगाते हैं एक दिन में,
एक एक दिन में लगाते हैं, कहते हैं हमने तीन बार परिक्रमा लगाया तो यदि कहा जाए आपकी परिक्रमा नहीं तो मारने बैठ जाए, मारने के लिए क्रोध आ जाए, ये परिक्रमा का फल हुआ क्रोध, तो इसलिए कहते हैं दुर्गे हैं, बहुत साधन भजन करने पर भी उनको जो नहीं जाना जाता है, ऐसे सर्व काल व्यापी एक रस में स्थित कुटस्थ जो भगवान मधुसूदन है उनके चरण कमलों में व्यासना पहाड़ी रति राश, व्यासना पहाड़ी माने समस्त दुर्गुणों को पापों को अपराधों को अनर्थों को दूर करने वाले ये उनके चरण कमल, पापों को भी पाप की वासनाओं को वो कुटस्थ इसको भी कहते हैं, अपराध में भी अविद्या इत्यादि ये कुटस्थ कुट है, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट ये कूट होता है, जो अपराध है वो तो प्रारब्ध कुछ है इस जन्म में हमारे अपराध जो अभी है जिसका फल भोग रहे हैं ये प्रारब्ध, और प्रारब्ध में अभी ऐसे तैयार हैं कितने भंडार, और उसके बाद में अभिज्ञान तुटस्थापित पड़ेगी, अविद्या है मूल उसकी। ये सब चीजें दूर हो जाती है आप जैसे महात्माओं के चरण की सेवा करने से, और प्रभु के प्रति ये सब से निर्मल चित्त वाले और उनकी भक्ति आपके चरण में। रति रासो अर्थात प्रेमोत्सव हुआ करता है, इसलिए अनुसंग रूपे संसार दुख निवृत्ति हो जाती है। उसमें संसार की जो के जो दुख हैं, जन्म मरण इत्यादि, प्रताप इत्यादि, अनायास रूप में बिना इच्छा के ही, बिना उसके लिए प्रयत्न किए ही अपने आप दूर हो जाते कर रहे हैं। किस लिए? भगवत प्रेम के लिए। और हो गया इधर में भगवत प्रेम तो होगा ही, किंतु पहले हो गया अनुसंगिक रूप में संसार का ये सब दूर हो जाए। कुटस्थ माने फिर अब करें, पहले बतलाया कुटस्थ माने दुर्भिज्ञ, और बतलाया जो सब समय एक रस में रहने वाले हैं, कभी भी उनका कुछ परिवर्तन नहीं होता है, सदा एक रस, ये कुटस्थ। अब यहां पर कुटस्थ शब्द की विशेषण एक विशेष अर्थ के लिए किया सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं। कूट अर्थात अन्नकूट, कुटस्थ है ना, अन्नकूट नाम है विख्यात गोवर्धन के सम्मुख में सिंह पर, सिंह को भी कूट कहते हैं, जहां पर कि गोवर्धन जी में अन्नकूट लगा था। अन्नकूट कहां से आया?
अन्न का समुदाय,
नंद बाबा ने बनाया रसोई, अन्न का कूट आया कहां से, किसने बनाया था, तैयार घर में कौन?